अभी भी जवाब मिलने की उम्मीद है।
पता नहीं उस मुरादी ने अपने मोबाइल के साथ क्या किया है, कभी मिलता नहीं कभी उठाता नहीं।
इन मोहतरमा के बाद आप आइए।
क्या कर रहे हैं, ये दस्तखत किस लिए ले रहे हैं?
अब आपके पास कहने के लिए और क्या बचा है मेरे भाई, कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप तो सील हो गई है और पता नहीं हमारे पैसे का क्या होगा। ऐसे में आपके पास कहने को और क्या बचा है, तो और क्या होगा?
पर शिकायत करने से भी तो कोई काम नहीं बनने वाला है।
जनाब हम शिकायत नहीं करेंगे, हमको हमारा पैसा दे दीजिए और कुछ नहीं।
ये सही कह रही है।
इजाजत दें जरा, एक मिनट मेरी बात सुने। देखिए अगर आप मेरी शिकायत करेंगे तो इस तरह आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। जेल जाने से तो आपका काम नहीं बनेगा ना, आपके पैसे तो नहीं मिल पाएंगे।
लेकिन खातिनों हजरात जरा मेरी बात सुने, आप अपने वादों पर किस तरह अमल कर पाएंगे? काम की जगह सील हो गई है और आप वहाँ जा भी नहीं सकते।
कैसी बातें कर रहे हो?
एक मिनट सुन ले।
हमारे पैसे का क्या होगा, तुम बता के क्यों नहीं?
की हैसियत बदलने की वजह से आप यकीन कर लें, ये मसला उस बंदे से मुतालिक है जिससे हमने जमीनें खरीदी हैं। हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल गया तो सारा मसला हल हो जाएगा। और
हमको हमारा पैसा चाहिए भाई, हमने बहुत
टाइम लेने के चक्कर में है।
रिश्तेदार था, उसके साथ यही मसला पेश आया। जब तक ये मसला हल होता असल मसले को ही दबा दिया गया। मैं शिकायत करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। शिकायत करूंगी मैं।
नहीं, हमको हमारा पैसा चाहिए।
वो भाग गया है, चला गया है, शायद कोई मुश्किल आई है। आरश अनजान मत बनो, तुम्हारे बाबा को भी पता चल गया है कि आदमी भाग गया है। अब कहाँ जा रहे हैं? तफ्तीशी ऑफिस जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ उस खातून से बात करने। तुम कहाँ जा रहे हो? इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, तुम किस लिए जाना चाहते हो? मुतरमा आपको पहले हमें खबरदार करना चाहिए था, उसके बाद काम बंद करवाती।
मैंने आपको पूरी तफसीलात बता दी, आपने खुद दिलचस्पी नहीं ली।
अच्छा, और उसके बाद लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने का फैसला किया?
मुझे उससे कोई गरज नहीं कौन किसके खिलाफ भड़का रहा है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी थी, मैंने निभाई।
मुतरमा क्या ये सारे इंतजाम कानून जारी करने के लिए नहीं है?
हाँ तो।
और क्या कानून का नफाज आवाम की खिदमत के लिए नहीं है?
बिल्कुल है।
तो मुतरमा मेरे प्रोजेक्ट को बंद करा के आपने उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें सरमायाकारी की थी डरा दिया है। हमने उन घरों को एडवांस में कम कीमत पर बेच दिया ताकि नौकर पेशा लोग सरमायाकारी करके अपने घर के मालिक बने।
बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काश ये काम आप सही तरीके से करते ताकि कोई मुश्किल पेश नहीं आती। उस वक्त और भी कई लोग उस केस में फंसेंगे, आप नहीं जानते।
मैं कहां से जान पाता कि इन जमीनों की हैसियत रिश्वत देकर तब्दील करा दी गई है?
आपको पूछना चाहिए था।
ठीक है मोहतरमा, आप सही फरमा रही हैं, हमने गलती की है। अब तो ये परेशानी आ पड़ी है, कोई रास्ता बताएं कि हल किया जा सके।
मुझे
देखिए मोहतरमा, मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर आप मान जाएंगी तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा और उन लोगों का भी जिन्होंने अपना सारा कुछ बेचकर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया है।
फरमाइए।
आप फर्ज करें कि मैं शुरू से उन जमीनों की हैसियत को बदलना चाहता हूँ, यानी कि ज़रात की ज़मीनें मैं उस पर रिहायशी इमारत बनाना चाहता हूँ। अगर इस पर ज़्यादा खर्च नहीं आता है तो मैं अभी नकद दे देता हूँ, अगर इस काम की कीमत ज़्यादा है तो मैं किस्तों में अदा कर दूंगा या फिर चेक दे दूंगा।
अगर ये काम मुमकिन होता तो मुरादी साहब उसकी खातिर रिश्वत का सहारा नहीं लेते।
भूल जाएं मकसूदी साहबा, भूल जाएं, मुरादी को भूल जाएं।
भुला दिया, बताइए क्या करना है?
इन जमीनों की हैसियत बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए।
गुलशन आबाद की जमीनें हर लिहाज से जरई जमीनें हैं।
इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि उनकी हैसियत तब्दील हो ही नहीं सकती।
अरे मोहतरमा, इस मुल्क में रोजाना कितने लोग अपनी जमीनों की हैसियत बदलते हैं, किसी को उनसे कोई लेना देना नहीं है। हत्ता दरिया के किनारे 20 मंजिला होटल बनाते हैं, किसी को एतराज नहीं होता है, लेकिन हमने एक टुकड़ा जमीन क्या खरीद ली, आपने उसे जरात की जन्नत बना दिया। बताइए,
उस होटल का केस अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक ही दिन में से बंद करवा देती। और हाँ, आप हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय बेहतर है कि जाके मुरादी की शिकायत करें, मैंने भी एक केस बना दिया है।
तो इसका मुझे क्या फायदा मिलेगा?
वाकई में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की वारंट जारी हो चुके हैं लेकिन वो बिल्कुल गायब हो गया है। खुदा हाफिज।
शाहिदी साहब, इंजीनियर साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं?
बहुत शुक्रिया।
ये वर्कशॉप का मसला क्या है?
कोई खास बात नहीं है, जल्दी हल हो जाएगा। आप फिक्र
क्या क्या हल हो जाएगा, आखिर मैं क्यों परेशान ना हूँ? वर्कशॉप बंद हो गई है।
जी जनाब, असल में कागजात में थोड़ा सा मसला पेश आ गया है, अलबत्ता उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये उस कंपनी का मसला है जिससे हमने जमीनें खरीदी हैं।
देखिए, मेरे पास जो कुछ भी था बेचबाज के इस काम में लगा दिया,
मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी सब इस काम में लग गई, इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे बच्चों को छत नसीब होगी। समझे आप?
आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मुतमईन रहे, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सामने मत करो, मेरा दिमाग घूम गया है। अगर इसकी आगे बात बढ़ गई तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम किसके बेटे हो, समझे?
ठीक है जनाब, आप आराम से रहें, अभी कुछ नहीं हुआ है यार।
जरा इधर तो आओ, बताता हूँ। मेरे पैसों का अभी के अभी बंदोबस्त करोगे, अगर अपनी गाड़ी बेचोगे तो एक हिस्सा होगा, बाकी पैसों का जल्द ही बंदोबस्त करके देना होगा।
छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कि चंद दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हो जाएगा।
ये सब बातें मुझे मत सुनाओ तुम। ये लो इंजीनियर, पढ़ो इसको तुम, ये तुम्हारा बनाया हुआ एग्रीमेंट है और जिसको तुमने माना है, और इसको मैं खुद तोड़ता हूँ। मैंने तुमको बताया ना कि खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम आगा ज्यादा होने का रोब छाड़ते हुए मुझे परेशान करोगे तो मैं देख लूंगा तुम्हें। कल अपनी गाड़ी बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देना।
शहीदी साहब सलाम। मैंने आपसे वो घर बुक कराया है, अगर आपको याद हो।
देखिए, अगर मामला खत्म करके पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा मेरे।
नहीं, मुझे अपना पैसा नहीं चाहिए।
तो बेफिक्र रहिए, प्रोजेक्ट का काम चंद दिनों बाद दोबारा शुरू हो जाएगा और हम उसको जारी रखेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये कहने आया था कि दूसरों से जितना भी कहा है कि शेख साहब की जमानत कबूल करें, नहीं मान रहे। ये समझते हैं कि आपका शेख साहब से इख्तलाफ है और उनकी बात नहीं मानते।
क्या मतलब?
देखिए, ये लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, सब सोच रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं ये कहने आया था कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जल्दी करें ताकि ये मुश्किल हल हो। मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। ये घर आधा मेरे और आधा मेरे हमजुल्फ के नाम है। मुझे जब से याद है मैं हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ता रहा हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जल्दी इस मसले को हल करें, क्योंकि ये सबके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।
मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर प्रोजेक्ट के साथ ये हादसा पेश ना आता तो एक महीने बाद आपकी लोन की बारी थी।
शहीदी साहब, मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस वक्त हमारी कंपनी के हालात बहुत खराब जा रहे हैं, ये लोन वाकई में हमारा मसला।
हाँ, प्रोजेक्ट के सील होने की खबर हर जगह पहुँच गई है। मरकजी बैंक के चीफ ने आपको लोन ना देने का हुक्म दिया है। ये लीजिए,
शुक्रिया। मैं बच्चा तो नहीं हूँ जो आप मुझे बहला रहे हैं, आपने खुद लोन को रोका है ना।
शहीदी साहब, मैं ये बात दूसरों के सामने नहीं कहना चाहता था। अगर मैंने दूसरे कर्ज गाहों की तरह आपकी शिकायत नहीं की तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद की इज्जत की खातिर था।
टोकन नंबर 13, काउंटर नंबर 3 पर जाएं।
मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, जिसके बारे में भी ख्याल था कि मुरादी से राब्ते में होगा, फोन किया लेकिन किसी को उसका नहीं पता।
अब वो दूरबीन से भी नजर नहीं आएगा।
क्या मतलब?
क्या मेरी बात वाजह नहीं थी?
मुझसे इस लहजे में बात क्यों?
इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ चेक करो, जरूरी चीजें उठाओ और यहाँ से जाना होगा।
हम क्यों सामान समेटे? फ्रॉड मुरादी ने किया है, हम क्यों भागे?
हम भाग नहीं रहे, 2 घंटे बाद वो यहाँ आएंगे, सील कर देंगे, फिर हम कुछ नहीं उठा पाएंगे।
जमीनों की हैसियत की तब्दीली गैर कानूनी थी, प्रोजेक्ट बंद करा दिया गया, अब यहाँ को क्यों बंद करेंगे?
लगता है तुम्हें खबर ही नहीं है, सबने जाकर हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया है, समझे? 2-3 घंटे में मायदा की गिरफ्तारी के वारंट लेके आ जाएंगे और यहाँ को सील कर देंगे।
हम जाके लोन ले लेंगे, आधे लोगों को उनका पैसा वापस कर देंगे, बाकी अफराद को मामला साफ होने
तक तुम्हारे तजावीज की कोई जरूरत नहीं है। वो साहब जिसे तुम अपने बाबा का पक्का दोस्त समझते थे, अब साफ मुकर गया है।
कितना बेवकूफ आदमी है, यानी लोन देने में मसला खड़ा कर दिया है।
बैंक का मैनेजर जान गया है कि हमारा काम फंस चुका है, इसीलिए उसने लोन को रोक
दिया। अच्छा, उसे कर्ज ले लेते हैं, जब काम चल पड़ेगा तो उन्हें वापस कर देंगे।
मुरादी को तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ डाला था।
अब्बू बेचारे को उसके बातिन का क्या पता था, कहां से जानते कि फ्रॉड ही निकलेगा।
आरश भाई, उनको बेचारा मत कहो और यहां खड़े मत रहो, जाके देखो जो फाइल्स और कॉन्ट्रैक्ट मिले उन्हें उठा ले आओ।
मैं अब्बू के पास जाके देखता हूं, शायद कोई रास्ता निकला है। हंसो मत मोहम्मद हुसैन, मेरे अब्बू से अगर कुछ बन पड़ा तो करेंगे।
ठीक है आरश भाई, जाओ जाके जो काम मुनासिब समझते हो।
पैसे लेकर आऊंगा तो गलती का एहसास होगा तुम्हें। अबू, लोगों ने जाकर शिकायत कर दी।
शहीदी साहब की शहर में इतनी इज्जत है कि लोग उनकी बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे।
अबू, अगर लोगों को पैसा नहीं देंगे तो केस बड़ा हो जाएगा।
अस्तगफिरुल्लाह।
तो अब क्या करें?
लोग ढीठ हो गए हैं। इतने साल हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ते रहे और अब उनके दिल से रहम मुरव्वत बिल्कुल निकल गई है।
अगर आप हमें थोड़ा पैसा दे दें तो आधी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। हम भी लोन लेके एक महीने में आपको पैसे वापस कर देंगे।
मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,08,000 तुमान रह गए।
कोई बात नहीं, अपने खुफिया अकाउंट से दे दें।
कौन सा खुफिया अकाउंट? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने अपना सारा पैसा चीन से कपड़ा मंगवाने के लिए दिया है और अभी मैं दुबई जा रहा हूँ। देखना यह है कि माल कब पहुँचता है। यहाँ माल पहुँचने के बाद भी 1-2 महीना लग जाएगा पैसा आने में।
कुछ ना देने से 1,00,000 तुमान भी बेहतर है। कम से कम 2 अफराद का मुंह तो बंद कर देंगे।
नहीं बेटा, बाकी अफराद एतराज करेंगे, समझेंगे उनके पास पैसा है लेकिन सिर्फ उन अफराद को दे रहे हैं जो ज्यादा चापलूस हैं।
अच्छा तो हाफसी से 1 महीने के लिए कर्जा ले लें।
नकद पैसा कहाँ है? बाजार में नकद पैसा बिल्कुल नापैद हो गया है। ताजिर लोग काम में पैसा लगाने को तरजीह देते हैं।
मैं कुछ नहीं जानता अबू, मुरादी का तारुफ आपने हमसे करवाया था, अब आप ही हमारी मदद करें ताकि हम इस दलदल से निकल सकें।
क्या मैं इल्म गैब जानता हूँ जो मालूम करता कि मुरादी ने गैर कानूनी तरीके से जमीनों की हैसियत बदलवाई है? मैंने उस वक्त भी तुम लोगों से कहा था कि आंखें खुली रखो, कोई गड़बड़ तो मुझे कसूरवार ना समझना। कहा था कि नहीं कहा था?
अब हम क्या करें?
कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है बगैर इसके के खुद जाके जमीनों की हैसियत बतला ले।
अगर मायदा को जेल हो गए तो क्या होगा?
तुम परेशान ना हो, मायदा के गिरफ्तारी वारंट जारी भी हो गए तो हाजी साहब अपनी बहू को जेल नहीं जाने देंगे।
कम से कम मुतालिका दफ्तर जाकर बात करें कि कुछ किया जा सकता है या नहीं।
मुझे दुबई जाकर वापस आने दो, देखते हैं क्या होता है। मैं कल वापस आ जाऊंगा। देखो थोड़ा खाना तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। अपना मोबाइल भी ऑन रखो ताकि तुम्हारी अम्मी को कोई काम हुआ तो तुमसे बात कर सके। हेलो मजीद।
सलाम।
कहाँ हो?
सलाम।
तुम्हारा बेगैरत भाई कहाँ है?
कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम।
तुम्हें अपने भाई का नहीं पता?
यकीन करो मैंने पुलिस वालों को भी यही बताया है, लगता है उसे जमीन खा गई।
उस दिन तुम बेगैरत ने मुझे बाजार में कहा कि प्रोजेक्ट को अधूरा ही बेच डालें।
आरश भाई जरा जबान संभाल कर बात करो।
उस दिन तुमने ये बात कही जानते थे कि इसमें कानूनी झमेला है।
अगर मैं गुजारना चाहता हूँ तो तुम मेरा यकीन करोगे? अरे मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि हाजी मिर्जाई के साथ नमक हरामी करूँ।
तुम दोनों नमक हराम हो, हटो पीछे। दुआ करो कि मिल जाए वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगे।
सलाम अलैकुम।
सलाम।
मुहतरमा माफ कीजिएगा, सबसे पहले ट्रेन किस टाइम की है?
कहाँ के लिए चाहिए?
फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये बताइए कि कब और कहाँ की है।
जुनूब की ट्रेन 2 घंटे बाद पहुंचने वाली है।
ठीक है, 2 अफराद की जगह होगी?
जी हाँ, सीट ज्यादा है।
शुक्रिया, कितने बने?
आपकी तबीयत ठीक है?
जी जी, बस मेहरबानी करके जल्दी दे दें। मैं हूं। तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं? देखो मायदा बेगम, मैंने बैठ के इस मसले पे बहुत सोचा, देखा कि हाँ तुम सही कह रही थी, मैं गलत था, तुम सही थी, माफी चाहता हूं। तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगी?
मैं क्या बोलूं?
यही कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं है।
नहीं नहीं, तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें माफ करूं?
तंग नहीं करो ना।
नहीं ना, सच कह रही हूँ, कंपनी खुद तुम्हारी है, जो करना चाहते हो करो बगैर इसके कि मुझे इसके बारे में एक लफ्ज भी बताओ।
मैंने तो तुमसे माफी मांग ली ना, तुम सही थी।
मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि सिवाय मेरे सबको पता है कि क्या चल रहा है। मैं इसके बाद तुम्हारे किसी भी काम में दखालत नहीं देना चाहती, समझे मोहम्मद हुसैन?
मैंने कहा ना कि तुम हक पर हो, मुझे इससे पहले तुम्हें बताना चाहिए था, क्योंकि तुम बॉस हो, तुम कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हो, मैं दफ्तर का मुलाजिम हूँ।
बल्कि मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ। खुश हो?
ज़्यादा बनो मत।
मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, सोचा था मसला जल्दी हल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को परेशान करो।
चाय या फल?
हाँ फल।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
ये नाकाबिल तोहफा।
ये क्या है?
मैंने सोचा चंद दिनों के लिए कहीं हो आओ, थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा है।
इस बोहरानी हालत में कहाँ जाएं?
कैसा बोहरान? इस तरह की मुश्किलात तो पेश आती ही रहती हैं। याद है 2 महीने पहले पानी के महकमे वाले आए थे, कह रहे थे कि जनाब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। क्या हुआ? मैंने जाके उसको हल कर दिया और तुम्हें परेशान नहीं होने दिया।
ठीक है, लेकिन अभी सारे हालात दरहम बरहम है, पहले उनको तो ठीक होने दो।
तुम मसले को बाहर के जाविये से देख रही हो, समझती हो कि बहुत पेचीदा है। मैंने आज जाके मालूम किया तो पता चला कि थोड़ा सा जुर्माना देने के बाद जमीनों की हैसियत बदली जा सकती है।
अगर ये काम इतना ही आसान है तो फिर मुरादी ने रिश्वत क्यों दी?
अभी फर्क पड़ता है, हुकूमत सिर्फ एक लाइसेंस के खातिर लोगों को आपस में नहीं लड़ने देगी।
ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल यही रहना चाहती हूँ, इस तरह मैं ज्यादा मुतमईन रहूंगी।
ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें कोहे काफ के सफर पे भेज रहा हूँ। तुम्हें बस 3-4 दिन के लिए जुनूबी इलाकों में जाके थोड़ा सा आराम करना है।
क्या मतलब? यानी कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे? ये कैसे काम कर रहे हो तुम?
मैं चाहता था कि पहली बार अपनी सास को किसी अच्छी जगह सफर पर भेजूं। इस तरह से तुम भी मुझे नहीं देखोगे और मेरी कदर आएगी। मायदा, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो?
कितने बेवकूफ हो तुम, कभी कभी तो मुझे तुम्हारे काम बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, क्या कहूँ।
मायदा उठो, 1.5 घंटे बाद ट्रेन चली जाएगी, हमें जल्दी पहुँचना होगा, उठो।
मोहम्मद हुसैन रुक जाओ, पहले अम्मी को तो आने दो।
उन्हें फोन कर दो, कहो कि मैं सामान बांध के बस आपको लेने आ रही हूँ।
उनको सफर का पता चला तो वो हैरान और परेशान।
अच्छा है, सोचेंगे खुदा ने कैसा पागल दामाद दिया है। जाओ ना, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
मिर्जाई साहब, हमारे पैसे का क्या होगा? अब हम वक्त नहीं दे सकते हैं।
ये दफ्तर तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाता। हम इस दफ्तर को बंद नहीं होने देंगे।
अरे भाई आप बाहर जाइए, मैं इस जगह को सील करना चाहता हूँ।
जनाब आप ऑर्डर लाए हैं?
ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे पैसे खाए हैं, इनको हथकड़ी लगाएं और ले जाएं।
जनाब हम ऑर्डर लाए हैं, आप कौन?
मैं आरश मिर्जाई हूँ, मिर्जाई साहब का बेटा। ये हुक्म किसने दिया?
जज हुक्म देता है तो हम भी उस पर अमल करते हैं।
जज ने यूं ही बैठे बैठे हुक्म जारी कर दिया?
ये अदब से बात करें।
आपको पता भी है कि मसला क्या है?
अगर आपको शिकायत है तो आप अदालत जाएं, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई हैसियत होगी।
मैं यहाँ का कर्तव्य धरता हूँ।
अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको हथकड़ी लगाएं और ले जाएं।
मासूमी साहब, अगर आप ये काम ना करते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता।
बात कर रहे हो तुम?
जाइए आप लोग बाहर,
मेरे पैसे डूबे मेरे।
चलिए बाहर निकलिए,
चुप हो जाइए, समझ लेना, छोड़ेंगे नहीं तुम।
आइए
चलिए चलिए
बाहर निकलो,
देखते हैं आगे क्या होता है।
चलो
तो यहाँ एकदम ही फंस गए।
चलो चलो भाई चलो बाहर, चलो चलो चलो।
क्या होगा हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
चलिए चलिए बंद कीजिए।
जी आइए आइए। आप भी जाइए अपना काम देखिए।
अम्मी अब्बू के सामने कुछ कहना मत, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया।
मैदा मैं बच्चा तो नहीं हूँ, खुद ही कुछ बना लूंगा। मूड नहीं हुआ तो अम्मी के घर चला जाऊंगा।
बुरी बात है।
तो उस तरफ क्यों जा रही हो?
अभी आती हूँ।
मैदा देर हो जाएगी।
अभी आई।
अरे कहाँ जा रही हो?
खुदा हाफिजी करके आती हूँ ना।
आओ चलें, आज मंगल है, अब्बू जान क्लास में है और अम्मी भी जोरा खाला के घर गई है।
मोहम्मद हुसैन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हारी अम्मी नहीं आएंगी?
मोहम्मद हुसैन से 5 मिनट हुए यहाँ इंतजार करते हुए।
पर देर हो जाएगी।
बहुत वक्त पड़ा है, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे?
आरश है।
तो जवाब दे दो ना।
कोई जरूरी काम नहीं है।
अगर जरूरी काम नहीं होता तो वो इतना फोन नहीं करता।
तुम आरश को नहीं जानती, उसको कभी कभी कुछ हो जाता है, दफ्तर में भी मुझे मुसलसल फोन करता रहता है। जाओ अपनी अम्मी से कहो जल्दी आए। ट्रेन चली गई तो फिर वहां पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं जवाब नहीं देता तो मतलब मैं बात नहीं कर सकता। इतना मुसलसल मुझे फोन मत किया करो।
जरूरी काम होता है तभी तो फोन करता हूं। कंपनी सील कर दी गई है।
या खुदा, सील कर दिया। मायदा की गिरफ्तारी का वारंट था या नहीं?
इतना हुल्लड़ हंगामा था कि मैं पूछ ही नहीं पाया। अब हम क्या करें?
आरश, तुमने कहा था कि अपने बाबा से बात करोगे, बात की?
हाँ, उन बेचारे का तो अकाउंट ही खाली है।
बेचारा मत कहो, मत कहो उसको बेचारा। तुम्हारी इसी बात से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जाके उनसे बात करो, कहो कि जमानत का कहीं से इंतजाम करें ताकि गिरफ्तारी का वारंट रुक सके। ये सफर पे जाने का कौन सा वक्त है?
कुछ हुआ क्या?
हाँ नहीं, दफ्तर में मुलाजिमों ने बीमे के मसले को लेकर वहाँ पर झगड़ा खड़ा कर दिया। आरश को तो जानती ही हो, वो भी उनसे लड़ पड़ा। तुम बैठो, कहाँ रहेगी तुम्हारी अम्मी?
सलाम। मोहम्मद हुसैन पेट्रोल रिजर्व पर पहुंच चुका है।
ट्रेन छूट जाएगी।
देर नहीं होगी, सड़क पर बेकार पड़े रहने से तो बेहतर है।
ऐसा क्यों कर रही हो? वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम भी ख्याल रखो।
मुझे ये सफर अच्छा महसूस नहीं हो रहा।
चाहो तो मैं नहीं आती, अभी एक बहाना करके कैंसिल कर देती हूँ।
बात आपकी नहीं है, आज तक मोहम्मद हुसैन को इतना परेशान कभी नहीं देखा।
इन 2 सालों में उनसे दूर नहीं रही हो तो दिल नहीं चाहता।
मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है।
इतना सोचने के बजाय उनसे पूछ क्यों नहीं लेती?
अगर बताना ही होता तो अब तक बता दिया होता। हेलो, सलाम। एक बात पूछूं, तुम मुझे सच बताओगे? कंपनी में कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं जानते, जैसे कोई शिकायत, कोई कर्जा वगैरह? तो मोहम्मद हुसैन इतना परेशान?
बहुत जल्दी पेट्रोल डलवा लिया?
हाँ, मैंने सोचा पहले आपको पहुंचा दूँ इसलिए थोड़ा सा लिया है, बाद में आके और डलवा लूँगा।
मोहम्मद हुसैन,
क्या है?
एक मिनट रुको, तुमसे कुछ काम है।
चलो रास्ते में बात करते हैं, देर हो जाएगी। चलो जल्दी मिलते हैं, वादा करता हूँ खाना टाइम पे खाऊंगा। चलो।
मोहम्मद हुसैन, कोई मसला पेश आया है क्या?
नहीं तो कैसा मसला?
अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो ना।
मादा, तुम क्यों चाहती हो कोई बहरान या कोई मसला खड़ा हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं किसी और तरीके से पेश आऊंगी।
लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना?
यकीन है, बस मैं इत्मामे हुज्जत करना चाहती हूँ। मोहम्मद हुसैन, मैं मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम?
चलो ना।
तुम दोनों क्यों नहीं आ रहे हो?
मुझे जब तक मालूम नहीं होगा कि क्या हुआ है मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी।
तो बताते क्यों नहीं क्या हुआ है?
कोई बात ही नहीं हुई।
तुम्हें अपने भाई की कसम, बताओ क्या हुआ है?
जमीनों के सिलसिले में एक और नया केस खुल गया। जिन लोगों ने एडवांस में बंगले खरीदे थे उन्होंने जाके हमारे खिलाफ शिकायत कर दी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। मैदा, खुदा की कसम, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ कर दो।
बस इतना ही, मुझे माफ कर दो। 2 घर क्या बनाने थे कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी?
खुदा साहिबा, आप चंद साल बाद उठ के ईरान आई हैं, अब आपको याद आया है कि आपकी एक बेटी है। आप हमें अपनी मुश्किलात खुद ही हल करने दें।
यानी जो तुम्हारे जी में आए करो, ये कोई बेकस और लाचार है क्या?
जरा आप सोच के बात कीजिए।
मैंने तो सोच लिया है, तुम्हें सोचना चाहिए कि जिंदगी के साथ कैसा खेल खेल रहे हो।
अगर आप वाकई में चाहती हैं।
मोहम्मद हुसैन, मुझे घर ले चलो।
तुम इतना बचपना क्यों दिखा रही हो मायदा?
क्या तुम्हें पता है कि गिरफ्तारी का वारंट क्या होता है?
गिरफ्तार होना भागने और भटकने से कहीं बेहतर है।
कैसा भागना?
हा?
चंद दिनों के लिए जुनूब जा रही हो, इस दौरान मैं कर्ज खाओं को राजी करके गिरफ्तारी के वारंट को खत्म करा दूंगा।
कर्ज खाओं को कैसे राजी करोगे?
लोन ले लूंगा, कर्जा ले लूंगा, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा।
मोहम्मद हुसैन, मुझे घर ले जाते हो या मैं टैक्सी करूं?
मायदा, क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें क्यों जेल जाना पसंद है? थोड़ा सोचो, चंद दिन के लिए सफर पे चलते हैं, अगर वो कुछ कर सका तो इत्मीनान से वापस आ जाएंगे, अगर नहीं कर सका तो तुम वापस आके खुद को हवाले कर सकोगी, कुछ नहीं खोगी। चलो भी, अब देर हो रही है।
मुझे नहीं लगता कि कोई होगा।
क्यों नहीं है? आप एक मिनट रुकिए।
लो आ गए।
आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी चीज हैं और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता?
सलाम जी, फरमाइए।
सलाम। पाते ही मैडम यहाँ रहती हैं?
जी, क्या काम है?
हम उनको ले जाने के लिए आए हैं।
उनके खिलाफ शिकायत हुई है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
मैं खुद साथ चलता हूँ, चलिए।
गिरफ्तारी का वारंट उनके नाम है।
वो इस वक्त नहीं है, आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो पुलिस स्टेशन
आएंगे। बातों में मत आइएगा इंस्पेक्टर साहब, ये टाइम लेके अपनी सिफारिशों को हरकत में लाना चाहते हैं।
हमारे पास इस घर की तलाशी का वारंट है, पर मैं नहीं चाहता कि हाजी साहब की इज्जत खराब हो।
अगर आपको हाजी साहब की इज्जत का ख्याल होता तो यहाँ लश्करकशी ना करते।
देखा इंस्पेक्टर साहब,
आपको घर की तलाशी लेनी है ना, तो जाइए ले लीजिए। आइए लीजिए।
नहीं नहीं, जरूरी नहीं है।
आइए ना
इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हीं को गिरफ्तार कर लें, करता धरता यही है।
वो कब तक आएंगे?
शहीदी साहब की इज्जत करना फर्ज है, इसलिए हमने उनके घर की तलाशी नहीं ली। हम नहीं चाहते थे कि उनकी इज्जत खराब हो।
मैं मायदा फातिमी हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आई हूँ। आइए चलिए मोहतरमा।
चाय हाजिर है।
क्या नया मुद्दा आया है?
नहीं बेटे, चेहलुम है इनका।
तब इनके लिए रोया क्यों जा रहा है? क्या बहुत ज्यादा हमदर्दी है इनसे?
वो समझते हैं कि वो अपने मुर्दे के लिए रो रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने लिए रो रहे होते हैं।
वो तो जिंदा हैं, अच्छे हैं, उनके लिए रोने की क्या जरूरत है?
इंसान जब रोता है तो या तो उसको किसी चीज की समझ आ रही होती है या कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पैदा होता है, उसकी सारी समझ लेकर उसको दुनिया में धकेल देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मौत एक कदम की तरह है, मुर्दे कम से कम हमसे एक कदम आगे हैं, ये हम हैं जो अपनी जगह खड़े हैं। बेटा जरा चीनी भी ले आना।
जी। अब आप मुर्दों से नहीं डरते?
नहीं, मुर्दों से क्या डरना, मैं तो जिंदा लोगों से डरता हूँ, खुद से भी।
آخه ما یک دم نگشتم شاد از این دیگه چو فردا دار ای خواهم داد خواهن بگویم صد هزار داد زنده.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کمه